फिर इसी तरह वक्त का बुखल भी होता है, और वो क्या होता है कि जिस काम में जितना वक्त लगाना चाहिए उससे कम लगाना। मसलन चार फ़र्ज़ कम अज़ कम 10 मिनट में तो पढ़ें, उसको आप 4 को 5 मिनट में पढ़ लें, ये वक्त का बुखल है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि आप किसी काम का पूरा हक ही नहीं देते, आधा आधा करके छोड़ दिया और चले गए आगे, हमें नहीं ज़रूरत करने की इस काम को। इसको आप ख़ुद चेक करें, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। किसी को कहा ज़रा घर साफ़ कर दें, कमरा साफ़ कर, कर दिया कर दिया, वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटा दी, पता चला जब बाद में खोला तो वो सारी चीज़ें जमा हो गई थी, ये भी बुखल है। फिर इसी तरह अगला बुखल जो है, कुछ नंबर्स काउंट करता जाए क्योंकि इसकी बाद में चेकलिस्ट बनेगी। तो अगला बुखल क्या है कि छोटी छोटी बरतने की चीज़ों पर बुखल करना। मसलन आप देखिए कि मैं कोई नेबर में रहता है तो उसने अगर कोई आलू प्याज टमाटर मांगा, यहाँ तो कोई मांगता ही नहीं है, हैं, और कोई मांगेगा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी ये मोहब्बत की बात है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक घर में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांगे। एक माँ थी, छोटी सी बात याद आ गई, तो मतलब लतीफ़ बात है, कर लेनी चाहिए, कोई मज़ायका नहीं इसमें, वरना ये भी बुखल हो जाएगा। तो माँ ने बच्चे को कहा कि जाओ हम साए से चमचा लेकर आओ, तो बच्चा गया आंटी को चमचा मांगा, आंटी ने कहा चलो भाग जाओ रोज़ लेने आ जाते हो। कि कह दिए बच्चे ने कि अम्मी आंटी तो चमचा नहीं दे रही, तो माँ कहने लगी हाय हाय कैसा ज़माना आ गया, लोग कितने बखील हो गए हैं, जाओ बेटा फिर अलमारी से अपना ही निकाल लो। तो ये ना करें, हैं, ये भी बुखल होगा कि अपनी चीज़ें आप संभाल दें और दूसरों की इस्तेमाल करने लगें। फिर इसी तरह देखें लंबी लिस्ट बनती है, आप किसी को दे रहे हैं तो गंदा नोट निकाल रहे हैं, अच्छा अपने पास रख रहे हैं, चेंज नहीं देते किसी को, अपने नहीं अपना जैसे चेंज होता भी है झूठ बोल देते हैं। फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब की ज़िंदगियों में आ चुकी हैं, करें क्या? इलाज करना चाहते हैं बुखल का? ऑनलाइन वाले भी लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, प्लीज़ टेक्स्ट खोल दिया करें। देखिए ये तो चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन की होंगी या मैंने किसी से ये बात सीखी ना, लेकिन आप लोगों की भी ज़िंदगी में होंगी ना, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इसी की बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी की तामीर होती है, शख्सियत बनती है। अगर ये चीज़ें हम अपनी कुरान पढ़ने के बाद नहीं निकाल सके तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ लफ्जी तर्जमा इस आयत का याद करके आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। तो करें क्या, यानी इलाज क्या है? नंबर एक, अल्लाह से मदद मांगें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये दुआएँ मिलती हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बुख़्ल, आगे और भी लफ्ज़ हैं लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ते रहे ना आज के इस टॉपिक पर कि अल्लाह मेरे दिल से बुख़्ल को निकाल दे, मेरे अंदर बुख़्ल ना आए। इंशाल्लाह ताला फील करेंगे कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में आसानी होने लगेगी। फिर इसी तरह एक इलाज जो किसी ने कहा जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उन्होंने कहा कि बखील जो होता है ना उसको बहुत मोहब्बत होती है अपने माल से ना। एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे तो इतनी माल से मोहब्बत है, ज़रा किसी ज़रूरतमंद को आता देखता हूँ ना तो मेरी तो जान निकलने लगती है, तो मैं क्या करूँ? तो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसे करो कि तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत है, लेकिन हर इंसान फितरी तौर पे बड़ा बनना चाहता है, तुम किसी को सिर्फ ये सोच के देना शुरू कर दो कि मैं उसको दूंगा तो वो मेरी तारीफ़ करेगा, यानी तारीफ़ तो हर एक कराना चाहता है। जब तुम थोड़ा थोड़ा उसको देने लग जाओगे ना तो तुम्हारे दिल से फिर माल की मोहब्बत कम हो जाएगी, तो बाद में तुम अपनी नीयत की इस्लाह कर लेना। यानी बस दफ़ा होता है ना डॉक्टर्स एक बीमारी का इलाज नहीं कर पाते तो वो दूसरी कर देते हैं उसकी ताकि उसका इलाज होगा, तो इस तरह से अपने दिल से इस माल की मोहब्बत को निकाला जा सकता है। फिर आप देखिए कि इसके अंदर एक और तरीका क्या हो सकता है कि हम अपने अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाऊंगी, कितनी शर्मिंदगी आएगी। उस रुसवाई को याद करें जो बखील के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से हमें मिलती है। फिर एक और इसका इलाज है और वो क्या है कि इस बात का यकीन रखें कि रिस्क अल्लाह ने लिख दिया, जो मेरी किस्मत का मुझे मिल के रहेगा, मैं किसी को दूंगी नहीं दूंगी वो मेरे हाथ से वैसे ही चला जाएगा, तो मैं क्यों ना खुद ही अपने हाथ से दे दूं। फिर इसी तरह एक और इसका इलाज क्या है कि उस बददुआ को याद करें जो अल्लाह के नबी की हदीस से हमें मिलती है कि हर रोज़ 2 फरिश्ते उठते हैं और एक दुआ करता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को ज़्यादा दे, और दूसरा कहता है अल्लाह जिसने माल को रोक लिया बखील का माल तल्फ कर ले। यानी बददुआ लग जाती है बखील को फरिश्ते की कि उसका माल फिर कम हो जाता है, और असल में देखें कि दिल घुट जाता है ना, ज़्यादा भी होंगे तो आपको कम लगेगा, तो ऐसी चीज़ों को सामने रखें। फिर एक और टिप क्या है कि देते वक्त सोचें कि शायद आखिरी बार दे रही हूँ, इसके बाद बस मौत की कश्ती पे बैठने लगी हूँ, तो बेहतर है कि अपने हाथ से दे दूँ। फिर अगली बात कि अल्लाह का एहसान समझिए कि उसने देने वाला बनाया, और आखिरी बात इसमें यह है कि जन्नत की नेमतों को याद कर लें। यकीन करें ये दुनिया के मिट्टी के खिलौने हमें सिर्फ इसीलिए बड़े प्यारे लगते हैं कि अभी हमने वो जन्नत के खिलौने नहीं देखे, अगर हम हकीकत में उनको देख लें तो मेरा अलग अपनी जान छुड़ाएंगे। जब हम कोई नई चीज़ ले आते हैं तो पुरानी जान छुड़ाते हैं, कहते हैं कोई तो ले ले। जिसको जन्नत की नेमतें याद आएंगी वो इंशाअल्लाह ताला अपनी वहाँ की चीज़ों को पाना चाहेगा, यहाँ की जो है वो ले लेगा, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को देखिए, बहुत खुले दिल के मालिक थे, कभी भी किसी के अंदर यानी इस तरह से नहीं रोक के रखते थे अपना माल के जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदा होना पड़े। अब लंबी सी चेकलिस्ट है, मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि मैं अगर चंद थोड़े से बोल के आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स अभी हमने तकरीबन 10-12 किस्म का बुखल देखा है, इन सब को चेकलिस्ट में ले लें। मसलन इसका तरीका क्या हो सकता है कि आप एक कॉलम बना लें, साइड पे दो छोटे कॉलम, यस और नो, हाँ और नहीं, और बीच में अपना मुहासबा हम कर लेते हैं। मसलन पहला पॉइंट बुखल की चेकलिस्ट का क्या होगा, पैसे का बुखल, और ख़ास तौर पे नौकरों के मामले में, क्या मैं अपने नौकर को कर्ज देती हूँ तो वापसी का तकाजा उससे करती हूँ। अब मैं जल्दी बोलती हूँ, जिन्होंने दोबारा सुनना है वो रिकॉर्डिंग में सुन के इसको सेट कर ले। क्या मैं गुंजाइश के बावजूद छुट्टी पर नौकर के पैसे काटती हूँ? क्या मेरे मुलाजिम से अगर कोई नुकसान हो जाए, यानी कपड़ा जल गया, बर्तन टूट गया, तो क्या मैं उसकी तनख्वाह में से पैसे काटती हूँ? क्या अगर वो कभी मुझसे एडवांस मांग ले किसी मजबूरी की हालत में, तो बाद में उससे काटती हूँ या उसको सदका कर देती हूँ? क्या मैं अपने मुलाजमों को तनख्वाह टाल टाल कर देती हूँ या वक्त पर? क्या अपने मुलाजमों को ताज़ा खाना भी देती हूँ खाने को? अगला पॉइंट लिख ले, या सिर्फ बासी खाना देती हूँ? मैं बारगेनिंग में कैसी हूँ? क्या मैं छोटी छोटी चीज़ें खरीदते वक्त चीज़ों के दाम कम करवाती हूँ? क्या रिक्शे वाले से किराया लेने पर झगड़ती हूँ? क्या मैं कपड़े अल्लाह के रास्ते में देते हुए उस पर से कीमती बटन और मोती सितारे उतार लेती हूँ? अब इसके बाद वो सारे पॉइंट्स आप आगे नोट कर सकते हैं, अगर वक्त इजाज़त देगा तो मैं इन पे बोल दूँगी, लेकिन यकीन करें कि ये आईना है हम सब के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ वो मामला करे जो हम अपने लिए चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगियों से हसद और इस तरह के बुखल को निकालना चाहिए। और ये शैतान का वादा है कि नहीं नहीं दोगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वमा अन्फ़क्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो भी नज़र मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदक़ात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सारी बुराइयाँ इस तर्ज़ अमल से महव हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर हो जाती है। ऐ नबी, लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है देता है, और आहे खैर में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने ही लिए है, यानी इसका फ़ायदा सरासर तुम्हें होगा, किसी दूसरे को इसका फ़ायदा नहीं होगा। आखिर तुम इसी लिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, तो जो कुछ माल खैर तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुमको दिया जाएगा, और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। एक शख्स ने किसी आलिम से कहा कि मुझे बहुत डर लगता है मौत से, मुझे अच्छी नहीं लगती मौत, मरने से खौफ आता है, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिसकी वजह से मैं मौत से डरना छोड़ दूँ। कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं ना, माल, तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें जो भी होती हैं, उनको सदका कर दो और अल्लाह के रास्ते में दो, और वो चीज़ें सोचो कि वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ तुमने जाना है। तो जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा ना, तो जहाँ बंदे की चीज़ें होती हैं वहाँ उसका बड़ा दिल लगता है, तो जब तुम्हारा सामान आगे पहुँच चुका होगा ना, तो फिर तुम मौत का सोचोगे तो तुम्हें ये खुशी होगी कि अच्छा मरने के बाद मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो अच्छी टिप है ना, मौत उन्हीं को बुरी लगती है जिनका दिल इस दुनिया में बहुत लगा हुआ है, यहाँ ज़रूरत का रखें और एक्स्ट्रा स्टोरेज वहाँ डिपॉजिट करवा दें। फिर फरमाया, ख़ास तौर पर मदद के मुस्तक वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए कि अपने ज़ाती कस्बे माश के लिए ज़मीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। इनकी खुददारी देख कर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं, तुम इनके चेहरों से इनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पढ़कर कुछ मांगे। ان کی مدد میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیں، اصحاب صفہ میں سے تھے، علم کے اتنے حریص تھے کہ اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں علم سے محروم رہ جاؤں، کھانا پینا کمانا تو دور کی بات ہے، تو بعض دفعہ اتنے بھوکے ہو جاتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ لوگ سمجھتے کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑا ہے لیکن اصل میں یہ بھوکے ہوتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، وہ لوگ جو غیور ہیں، جو نہیں مانگتے، جن کا کوئی معاش کا طریقہ نہیں، تم ان کو ڈھونڈو، سوال اٹھانے والے، ہاتھ پھیلانے والے، وہ لوگ جو زندگی میں اس طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جن کا کام ہی صرف مانگنا ہے۔ پہلے وہ مانگ مانگ کے لوگوں کو کوئی ایک کام کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے کام کے لیے مانگنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک قسم کا صدقہ خیرات کا ٹاپک پورا ہو رہا ہے اگلی صرف ایک آیت کے بعد۔ ہم سب یہاں اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اکیلے بیٹھ جائیں، بہت پرسنل، کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، کیونکہ آپ کی وہ ڈائری چرائی گئی تو میاں ناراض ہو جائیں گے۔ لکھیں، یعنی اب یہ محاسبے کا پوائنٹ ہے، اکیلے میں بیٹھ کے لکھیں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، کتنی مالیت کا زیور ہے، کتنے پلاٹس ہیں، کتنی کیش کی نقدی ہے، کتنا الماری میں اخبار کے نیچے رکھ کے چھپایا ہوا ہے کہ میاں کو پتہ نہ چلے، کتنا کپڑوں کی تہوں میں چھپایا ہوا ہے، سب لکھیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، کہ میں یہ سارا اپنے مرنے کے ساتھ ادھر ہی چھوڑ جاؤں یا پھر میرے ساتھ آگے جائے، دیکھیں گے دل کھلے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں وہ ٹھنڈک پیدا ہوگی جو ان چیزوں کی سنبھال سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم خود نہیں دیتے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا، چوری ہو جائے گی، کوئی غیر لے جائے گا، کوئی خرابی ہو جائے گی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کسی کی بہت بڑی ایک چوری ہوئی، تو اس کے بعد ان کے دل میں شیئر کیا انہوں نے کہ مجھے اس وقت کہتی ہیں کہ کئی لوگوں کے چہرے یاد آئے، ہائے یہ چیز فلاں وقت پہ میرے فلاں نے مانگی تھی، میں اس کو دے ہی چکی ہوتی، یہ زیور تو اس کو تھا، اس کو دے دیتی، یہ تھا، لیکن وہ چلا گیا تو اب چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، ایک انہوں نے رات کو خرچ کر دیا، ایک صبح کو خرچ کر دیا، ایک دوسروں کے سامنے خرچ کر دیا، اور ایک تنہائی میں خرچ کر دیا کہ میں اس آیت پہ عمل کر لوں۔ اور آپ دیکھیں تو یہ 4 ہی کیفیات ہر انسان کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن اس آیت سے مطلب کیا ہے کہ خرچ کرنے لگے ہو، انتظار نہ کرو، رات ہے تو دن کا انتظار نہ کرو، دن ہے تو رات کا نہ کرو۔ اور اسی طرح سے کوئی سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب سب کے سامنے دیں گے تو یہ تو ریاکاری ہے، تو دکھاوا ہے، کہیں کچھ نہیں کرو، تمہیں نہیں پتہ تمہاری موت اس سے پہلے نہ آ جائے کہ کوئی چلا جائے اور تم تنہائی میں دو۔ شیطان بڑے ہیلے بہانوں سے انسان کو روکتا ہے۔